તારીખ 10/9/1992 શ્રી સમયસર ગાથા 97 અને 98 પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 30
ઇસલિયે અનુભવ કરના ઇસકા સ્વભાવ હૈ ઇસકા સ્વરૂપ હૈ કે સ્વભાવ હૈ સ્વરૂપ હૈ ઇસકો ઠોસ રૂપ સે दिखाने के लिए ये कहते हैं आचार्य महाराज के आत्मा तो अनुभूति स्वरूप ही है। यहाँ अनुभव की प्रधानता से अनुभव की बात करनी है आचार्य महाराज को, इसलिए ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया कि ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसा नहीं कहा। क्या लिखने में भी अपना प्रयोजन है आचार्य महाराज को कि आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, पर जितने जितने भी गुण है विभुत्व प्रभुत्व आदि सभी स्वरूप है। लेकिन यहाँ बात चल रही है, प्रकरण चल रहा है स्वानुभव का चल रहा है, पर स्वानुभव कैसे हो यही उद्देश्य आचार्य महाराज जो कह रहे हैं वो इसी उद्देश्य से कह रहे हैं। तो ये कहा कि आत्मा जैसा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वैसा ही अनुभूति स्वरूप है। हर समय में इसका अनुभव चालू ही रहता है, उसको रोक नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। इसलिए अनुभव करना ये कोई समस्या नहीं है जीव की। क्या अनुभव करना ये जीव की समस्या नहीं है, क्योंकि आत्मा अनुभूति स्वरूप है। अब अपना अनुभव करना ये समस्या हमें दिखती है। क्यों कि भ्रांति से अध्यासित रूप से हमारी हालत ऐसी है कि हम ये समझते हैं, मानते हैं कि हमें ठंडी का, गर्मी का, मिठाई का, कड़वापने का, ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थों का अनुभव हो रहा है। अनुभव तो हो ही रहा है, लेकिन अन्य अन्य पदार्थों का, पर पदार्थों का, उसमें भी पुद्गल पदार्थों का और रागादि का, रागादि में जो है आकुलता, इसका हमें अनुभव हो रहा है। ऐसा हमारा ज्ञान है वो झूठा है, भ्रमित हुआ ज्ञान है वो। इस उसे अज्ञान भी कहते हैं, विपरीत ज्ञान भी कहते हैं, अध्यास भी कहते हैं, उसको भ्रमणा भी कहते हैं। ऐसे हमारा जो ज्ञान है वो अनादि से ऐसा है, तो किसी ने किया नहीं, अनादि से हमारी ये हालत है। आचार्य महाराज कहते हैं कि तुम जैसा मानते हो, जैसा जानते हो, जैसा अनुभव करते हो, ऐसी वस्तु स्थिति है ही नहीं, ऐसी वस्तु स्थिति है ही नहीं। जैसे कोई रस्सी में सर्प सर्प मान करके भयान्वित हो जाए, फिर भी रस्सी रस्सी रहेगी, सांप नहीं बन सकती। ये भय है, ये भ्रम से पैदा हुआ है, गलत फहमी से पैदा हुआ है। ऐसे हमें जो दुख पैदा होता है, इसका मूल कारण ये भ्रम है कि जिसका अनुभव हो रहा है उसको उसका हमें पता नहीं, पर जिसका अनुभव नहीं हो रहा है हम जानते हैं, मानते हैं कि उसका हमें अनुभव हो रहा है। उतनी ही जो कुछ समस्या है तो यहाँ पर इतनी ही है। इस समस्या का समाधान कर देते हैं श्री गुरु। कि ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो आबाल गोपाल सभी को, मैंने छोटे को बड़े को सभी को, इसमें सब आ गए, कोई बाकी नहीं रहे। थोड़ा थोड़ा दबके बैठना, इधर जगह हो जाएगी। श्यामलाल जी आ जाइए, आप इधर आ जाइए, जगह थोड़ी है, तब दो कुछ समय के लिए। सभी को सदाकाल निरंतर स्वयं ही मैंने किसी के मदद बिना, राग की निमित्त की, देव गुरु शास्त्र किसी की भी बिना मदद, स्वयं ही अनुभव में आता रहता है। क्या आता रहता है? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता रहता है। हालांकि अनुभव पर्याय का होता है, लेकिन यहाँ पर्याय को द्रव्य रूप से अभेद बना लिया है, पर्याय को द्रव्य रूप से अभेद बना लिया है, उसको अभेद विवक्षा कहते हैं। अध्यात्म में ये अभेद विवक्षा की प्रधानता है, अध्यात्म में अभेद विवक्षा की प्रधानता है। समय सार आचार्य महाराज ने यहाँ से ही चालू किया है, दूसरी गाथा में क्या कहा कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वही स्वयं समय है। क्या स्थित पुद्गल के प्रदेश में पर समय है और दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित वो स्वयं समय है। क्या कहा? दर्शन ज्ञान चारित्र से स्वरूप में स्थिर हुआ वो स्वयं समय है, ऐसा नहीं कह करके आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वयं समय है। क्या शैली है देखो, बहुत अध्यात्म के प्रधानता वाली ये शैली है समय सार में, क्योंकि यहाँ अनभिज्ञ को, अज्ञानी को ज्ञान कराने का आचार्य महाराज का प्रयोजन रहा है। तो वो अच्छी तरह जानते हैं, आचार्य है ना, इसलिए वो अच्छी तरह जानते हैं कि अज्ञानी को किस ढंग से ज्ञान कराया जा सकता है, वो अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उन्होंने खास स्पेशल प्रकार से बात की है, तो बहुत विचक्षण होते हैं आचार्य महाराज। जो शास्त्र की रचना करने वाले होते हैं बहुत विचक्षण होते हैं, उसका इस विषय में उतना अनुभव है, समझाने का सिखाने का तरीका जो है उसमें भी उसका अनुभव है, तो किसी ढंग से आसानी से कोई समझ सकता है, ये वो अच्छी तरह जानता है जो दूसरा नहीं जानता है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा अनुभव में आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान में जो वेदन है, अनुभव की क्रिया है जिसे हम अनुभव कहते, अनुभूति कहते हैं, ऐसा ही आत्म स्वभाव है, यही ज्ञान गुण है, ज्ञान स्वभाव है। जानना ज्ञान स्वभाव है ऐसा नहीं लेकर के स्वयं का स्वयं में अनुभव करना यही स्वभाव है, ऐसा कहा क्या? एक निर्जराधिकार में कलश है, उसमें अंतिम चरण है, शायद है 142 नंबर का ये श्लोक है, 142 ठीक बराबर कि ज्ञानम ज्ञान गुणम बिना कथमपि प्राप्तम क्षमन्ते नहीं। क्या कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान गुण के बिना प्राप्त नहीं होता। क्या ये मोक्ष पद है, ये किससे प्राप्त किया जाता है? साक्षात मोक्ष, इदं निरामय पदम। जो साक्षात मोक्ष है वो तो ये निरामय पद है, निरुपद्रवी पद है। संवेद्यमानं स्वयं, तो स्वयं सबसे संवेद्यमान होता है, अनुभूति में आता है, तो कैसा है कि ज्ञानम ज्ञान गुणम बिना, वो ज्ञान स्वरूप है पर ज्ञान गुण के बिना कथमपि दूसरे किसी भी प्रकार से प्राप्तम क्षमन्ते नहीं, वो प्राप्त करने के लिए क्षमता को धारण नहीं करता। चाहे कृष्यताम स्वयमेव, चाहे क्लेश को प्राप्त हो, दुख को प्राप्त हो, जो मोक्ष से उन्मुख क्रिया है, तो ऐसा कुछ भी क्रियाकांड हो, कितना भी दुख उसे क्रिया को करो, क्लिश्यताम च परे महाव्रत तप भाव तपो भारेण भगनास्तिरम। महाव्रत और तप से भार से टूट मरे, भग्न हो जावे, मैंने टूट मरे और क्लेश को पावे, साक्षात मोक्ष की प्राप्ति इससे नहीं होती। साक्षात मोक्ष इदम निरामय पदम संवेद्यमानं स्वयं, नानम ज्ञान गुणम बिना कथम अपि प्राप्तम क्षमन्ते नहीं। ये ज्ञान स्वरूप ज्ञान के सिवा, क्या कहते हैं कि स्वयं संवेद्यमान ऐसा जो ये ज्ञान, कैसा ज्ञान है, जो स्वयं संवेद्यमान है, किसी के मदद बिना उसमें वेदन का करंट चलता है। क्या चलता है? वेदन चलता है, उतना ही नहीं वेदन का एक करंट चलता है। ऐसा यह ज्ञान, ज्ञान गुण बिना, ज्ञान स्वभाव बिना, क्या स्वभाव है? स्वयं से स्वयं का वेदन करना, ऐसा ही ज्ञान स्वभाव है, दूसरा ज्ञान स्वभाव नहीं है। एक किसी अन्य रीति से तो उसकी प्राप्ति हो सकती नहीं। जिन साधक जीवों को, धर्मात्माओं को निर्जरा होती है, ये किस प्रकार से होती है, इसका ये श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। इसके पीछे 205-206 नंबर की जो गाथा है, उसमें इतना ज्ञान स्वभाव का और ज्ञानानुभव का इतना महत्व दर्शाया है कि अगर सही रूप से ये दो गाथा समझे ना, तो कहीं भी वो भूला नहीं पड़े, ये निश्चित रूप से बात है। 142 कलश, 205 गाथा, 206 गाथा, बहुत रहस्य भर दिया है यहाँ पर। 17-18 गाथा में तो आचार्य महाराज कहते हैं कि कोई पढ़े लिखे नहीं हो, समझो पहले के जमाने में ऐसे भी भाई लोग ऐसे थे कि जो पढ़ते ही नहीं थे, तो क्या उनको भगवान आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है? तो कहेंगे क्या करें, आप तो पढ़े लिखे हैं, समय सारा भी परमागम को पढ़ते हैं, लेकिन हम तो रहे अनपढ़, बचपन में पढ़े नहीं, इस उम्र में तो क्या पढ़ सकते हैं, क्या करें हम, कोई जरूरत नहीं। पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, न पंडित होने की भी जरूरत है। पढ़ना नहीं आवे, पंडिताई नहीं हुए, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे में जो अनुभव चल रहा है वो किसका हो रहा है, किसका चल रहा है, अनुभव को अवलोकन करके हमें अनुभव को समझना है। क्या हमारे अनुभव को अवलोकन करके हमें अनुभव को समझना है कि हमें किस चीज का अनुभव हो रहा है। हमारे श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा आत्मा का अनुभव हो रहा है, दूसरों का अनुभव, दूसरी चीज का अनुभव, दूसरे भाव का अनुभव होना असंभव है, अशक्य है, बन ही नहीं सकता। नहीं साहब, हम तो दूसरे का अनुभव करते हैं। गलत बात है, ये तेरा भ्रम है। क्या कहते हैं? ये तेरा भ्रम है, वो सरासर भूल है, पर इस भूल का फल परिभ्रमण है। इस भूल को जैसे कैसे भी मिटानी चाहिए। तो कहते हैं कि सदाकाल स्वयं ही अनुभव में आता है, तो इसके सामने प्रश्न हो सकता है कि आप कहते हैं तो महाराज हम नाम नहीं दे सकते क्योंकि आप हमारे शिरोधार्य हैं, आपके बात के हम मना कर नहीं सकते, इतनी हिम्मत भी हमारे में नहीं है, लेकिन वास्तव में हमें अनुभव आत्मा का नहीं हो रहा है, इसका सबूत यह है कि हमें आनंद नहीं आता। आप ही ने कहीं और जगह कहा है कि जिसको आत्मा का अनुभव हुए उसको तो आत्म शांति और आत्मानंद का अनुभव होता है, पर हमें तो न शांति मिली है न हमें आनंद आ रहा है। तो फिर आप कहते तो माने, लेकिन ये कैसे माने? हमारी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। तब देखिए, यहां पर एक बात हमें हमेशा के लिए एक शिष्टबद्ध रूप से समझनी है कि ज्ञानी हो या गुरु हो, इसकी कोई बात भी ऐसी हो सकती है कि जो हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करे, ऐसी हो सकती हो। प्राइमा फेसी ये बात है कि सुनते ही हमारी बुद्धि में स्वीकार नहीं हो सके, तो हमें क्या करना? बात सुनते ही हमारी बुद्धि में वो स्वीकृत नहीं हो, स्वीकृति नहीं आवे, ऐसा कैसा हो सकता है? इस वक्त हमें क्या करना? क्या हमें गुरु की बात का निषेध करके अवज्ञा करना, या हमें समझ में नहीं आवे तो हाँ में हाँ भर देना, झूठी हाँ भरना? क्या करना? झूठी हाँ भरना भी ठीक नहीं है और अवज्ञा करना भी ठीक नहीं है, तो फिर क्या करना? कि हमें ये स्वाध्याय में सब चर्चा हो सकती है, आप प्रश्न नहीं उठाते, हम उठाते हैं। तो इसमें ऐसी बात है कि हमें पहले तो इस प्रकार से सम्मत करना है कि जो कहने वाले हैं ये अनुभूति संपन्न पुरुष है, प्रमाणिक है, सत्य कहने वाले हैं, झूठ बताने वाले नहीं है, इसलिए ये कहते होंगे तो सही कहते होंगे, लेकिन हमारी समझ में वो बात नहीं आती है तो हमें समझने की कोशिश करना, यही हमारा धर्म है। न अवज्ञा करनी है न झूठी हाँ भी भरनी है। उसमें समझने के प्रयास करने में हम आशंका कर सकते हैं कि महाराज आपकी बात सही होगी किंतु हम उसको कैसे समझे। हमारी बुद्धि में भूतकाल में कोई अपराध हुआ है क्या? क्यों हम समझ नहीं सकते कि हमारी मति जो है वो साफ नहीं है, मलिन है। क्यों कैसे मलिन हुई है? कि भूतकाल में हमारे आत्मा ने अपराध किया है, इसलिए हमारी मति मैली हुई है। इसलिए आपके निर्मल बात को भी हम हमारी मति समझ नहीं सकते। तो हम क्या करें महाराज? कृपया हमें किस तरह से इस बात समझ में आवे, ऐसी कोई युक्ति, ऐसी कोई पद्धति हमें बताइए। इस तरह से समझने का प्रयास करना। यहां पर भी कोई ऐसी ही बात है कि जब श्री गुरु कहते हैं, भगवान अमृत चंद्र आचार्य महाराज ये बात कर रहे हैं, किसी के घर की नहीं है। हमारे दिगंबरामनाय में कुंदकुंज स्वामी, अमृतचंद्र स्वामी, समंतभद्र आचार्य, उमा स्वामी, ऐसे बड़े बड़े महान आचार्य हुए हैं जिनके वचन हमारे लिए आधारभूत माने गए हैं, मानने में आते हैं। ये ऑथेंटिक शास्त्र है हमारे, क्या है जिसका हम आधार ले सकते हैं। तो इस आचार्य की वाणी हमें हमारी समझ में नहीं आती, तो हम ये प्रश्न उठा सकते हैं कि महाराज आत्मा का अनुभव होता तो आनंद होता, आत्मा को शांति मिलती, लेकिन आप कहते हैं कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव तुझे हो रहा है, अबाल गोपाल मैंने तुझे हो रहा है, लेकिन शांति तो नहीं है जो अविनाभावी होती है, आपने ही बताया था, तो हम कैसे समझे। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ये बात हमारी थोड़ी आगे की भी तुझे सुननी है। क्या है? कि ये अनुभव में आता है फिर भी, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है तेरे परिणाम में, कि अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एक पना का निश्चय से तुम्हारा ज्ञान मूढ़ता को प्राप्त हुआ है। ज्ञान में मूढ़ता है, अज्ञान पना है, इसलिए तुझे यह अनुभूति है सोई में हूं ऐसा आत्मज्ञान उदित हुआ नहीं। देखिए क्या है, ये जो अनुभव में आत्मा आता है ऐसा कहा, इसका मतलब ये नहीं कि निर्विकल्प सत्संवेदन चलता है जो चतुर्थ गुण स्थान में आता है, ये कहने का अभिप्राय आचार्य महाराज का यहाँ पर नहीं है। यहाँ अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव आता है, इसका अर्थ ये है कि अनुभव रूप परिणमन चल रहा है, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव रूप परिणमन चल रहा है और लक्ष्य उधर नहीं है। परद्रव्य के साथ एक पणा का निश्चय, जहां निश्चय है वहां लक्ष्य है। तो मैं शरीर से राग आदि से तन्मय हूं, एक रूप हूं, ऐसा लक्ष्य में है, ऐसा निश्चय बन गया है। उस निश्चय के कारण अनुभूति है सो मैं हूं ऐसा परिणमन होता नहीं। परिणमन तो ऐसा भ्रांति से चलता है कि मुझे दूसरे पदार्थ का अनुभव हो रहा है, शरीर की साता का, असाता का, ऐसा दूसरा दूसरा अनुभव हो रहा है। इसमें मैंपणा हो रहा है, इसमें अहमपणा हो रहा है। इसी कारण से सही अनुभव है उस पर हमारा लक्ष्य नहीं जाता। कि लक्ष्य कहाँ है इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पर हमें थोड़ा परिणाम के विज्ञान को समझना है। क्या परिणमन में, परिणमन का भी विज्ञान है, एक पूरा डिवीजन है हमारे शास्त्रों में। एक द्रव्य स्वभाव का डिवीजन है जिसमें शक्तियों का वर्णन है। यद्यपि समय सार में शक्तियों का वर्णन भी परिणमन की प्रधानता से लिखा गया है। जैसे प्रकाश शक्ति 12वीं है, हमारा विशेष है अनुसंधान में, हम बता सकते हैं कि 12वीं जो प्रकाश शक्ति है, वहां आचार्य कहते हैं कि स्वयं का वेदन रूप प्रकाश शक्ति क्या है, स्वयं का वेदन रूप जो है वो प्रकाश शक्ति का स्वभाव है। तो ये परिणमन बता दिया, प्रकाश शक्ति में वेदन का परिणमन बता दिया, उसको प्रकाश कहते हैं। यहां भी प्रकाश शब्द कहेंगे क्या, आत्मा अपनी शक्ति से प्रकाशमान है, सानुभूत्या चकासते, मांगलिक में वो बात लिया है, क्या स्वानुभूति लिया, ज्ञान में शब्द लिया, देखिए स्वानुभूत्या चकासते, ज्ञान से प्रकाशित नहीं होता ऐसा कहा, स्वानुभूति से प्रकाशित होता है, क्योंकि वेदन है स्वानुभूति में, और वेदन है वो प्रकाश शक्ति का स्वरूप है, प्रगट स्वरूप है। ये क्या मेल बिठाते हैं, मंगलाचरण से लेकर के 17-18 गाथा से लेकर के 142वां कलश और 205-6 गाथा की टीका को, गाथा को लेकर के प्रकाश शक्ति आखिर में ले लो परिशिष्ट की, एक ही लाइन बैठती है पूरी की पूरी अनुभूति की। तो कहते हैं कि जो भावी शक्तियों का जो बात बताया वो द्रव्या द्रव्य का द्रव्य सामान्य का विषय है, शक्तियों का जो स्वरूप है, एक एक शक्ति है वो गुण का स्वरूप है, और वो तो कैसे परिणमन करती है, शुद्ध रूप, निर्मल रूप, स्वभाव रूप, तो पर्याय का एक विभाग है। तो पर्याय के विभाग में जो पर्याय का विज्ञान है उसमें एक बात बहुत जो महत्वपूर्ण है वो है कि जीव का लक्ष्य कहाँ है, उस पर इसके परिणमन का मूल्यांकन हो सकता है। किसी भी जीव का पर जीव के परिणाम का मूल्यांकन सही करना हो तो परिणाम का मूल्यांकन सही उसको लक्ष्य को समझे बिना नहीं हो सकता। लक्ष्य को हो, अभिप्राय को हो, क्या कोई किसकी भी बात बोलता है इसमें अपना अभिप्राय मिल जाता है, वो ऐसा कहता है ऐसा तुम क्यों कहते हो कि तुम्हारा भी ऐसा ही अभिप्राय है। जो विचक्षण है वो समझ जाते हैं, कोई दूसरे के नाम से अपनी बात कहता है, चालाक है थोड़ा कहने में, कोई दूसरे के नाम से लोग ऐसा कहेंगे, भाई कि लोग ऐसा कहेंगे ऐसा तुम कहते हो, इसका मतलब क्या कि तुम्हारा भी ऐसा ही अभिप्राय है। ऐसे कोई भी बात में, जैसे कोई हमारी प्रशंसा करते हो तो प्रशंसा करने में इसका अभिप्राय क्या है वो अगर हम नहीं समझेंगे तो हम कोई गलत फहमी में आ सकते हैं। क्यों, ऐसा भी हो सकता है कि वे पहले तो उनकी प्रशंसा करके मान देना, जब वो नष्ट समीप में आ जाए फिर इसका अपमान करना। तो अपमान करने का अभिप्राय रख करके कोई मान देता है और गले में माला डालना चाहता है तो कहेंगे, जो समझ गया वो कहेंगे कि साहब हमें आपकी माला नहीं पहननी है। क्या क्या कहेंगे, मान देकर चंदा लिखवा देते ना, हाँ उसका जेब को काटना है, मान दे दो, अच्छा चंदा लिखवा देंगे। मानी प्रकृति वाला ऐसा होता है कि मान मिलने से वो ज्यादा पैसा देता है। अभिप्राय को जो समझ जाता है वो क्या करेगा, वो फंसेगा नहीं। अच्छा, कोई हमारा हितक्ष भी होता है जो हमारे हित को देख करके हमें कठोर शब्द में कुछ उलाहना देगा, थपका देगा। जब हम अभिप्राय को समझ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि आपने अच्छा किया, अगर आपने ऐसा गुस्सा करके रोक नहीं लगाते तो मैं मर जाता। तो हम बुरा नहीं मानेंगे, कठोर बात सुन करके हम बुरा नहीं मानेंगे। ये अभिप्राय का विषय ऐसा है कि जहां तक अगले का अभिप्राय नहीं समझते, इनकी बात हम सही रूप से नहीं समझ पाते। ऐसे हमारे परिणाम का मूल्यांकन कैसे होगा कि हमारा लक्ष्य कहाँ है। अगर हमारा लक्ष्य पर पदार्थ पर है, हमारा लक्ष्य राग पर है, तो हम कहेंगे कि आत्मा ज्ञायक है, वो बात सही नहीं है। नहीं होता तो शांति और आनंद का अनुभव नहीं होता। इसलिए पहले लक्ष्य बदलना है। क्या अनुभूति तो अनुभूति चालू ही है, अगर लक्ष्य बदला तो वो सम्यक है। लक्ष्य नहीं बदला तो ये अनुभूति अनुभव होने पर भी अनुभव पहचाना जाता नहीं, अनुभव में अनुभव आता नहीं। जैसे कि हमारा लक्ष्य कहीं और हो और हम सुनते हैं और हमें दुकान याद आ गई, क्या हुआ कि हमने सुना अनसुना कर लिया कि नहीं कर लिया। लक्ष्य चले जाने से सुना हुआ अनसुना हुआ हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही अनुभव में आता हुआ भी अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने पहले ही लक्ष्य बदलने के लिए शास्त्र का उपदेश दिया है। आत्मसिद्धि में वो बात आई, श्रीमद् राजचंद्र जी ने कही, लक्ष्य थवाने कारणे कणा शास्त्र सुखदाये। लक्ष्य होने के लिए शास्त्र कहे हैं, पहले अनुभव कराने के लिए शास्त्र नहीं कहे। निश्चय बदलने के लिए, निर्णय बदलने के लिए, लक्ष्य बदलने के लिए शास्त्र कहे हैं। तो हम स्वाध्याय काल को करते हैं। श्री गुरु ने स्वाध्याय की परंपरा क्यों रखी, शास्त्र स्वाध्याय की परंपरा हमारे यहाँ क्यों चलती है? इसलिए चलती है कि पहले लक्ष्य बदलना है। स्वाध्याय के माध्यम से अगर हमारा लक्ष्य नहीं बदला, या लक्ष्य बदलने के लिए हम स्वाध्याय नहीं करते, अगर हमारा कोई दूसरा अभिप्राय है, तो ये शास्त्र का स्वाध्याय बेकार जाएगा। बेकार जाएगा उतना ही नहीं, किसी न किसी दुर्गुण की प्राप्ति, अवगुण की प्राप्ति होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र की रचना ही इसलिए हुई है कि पहले जीव का लक्ष्य बदल जाए, तो ये स्वानुभव में आसानी से सहज रूप से आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा। अगर लक्ष्य नहीं बदलेगा तो इनके लिए कोई अनुभूति में आना संभव नहीं है। आचार्य महाराज ने करुणा करके इस बात को स्पष्ट किया है कि लक्ष्य अनादि बंद भाव पर, बंद तत्व पर होने से, और लक्ष्य इसके होने से यहाँ इसके वश हो गया है प्राणी, उदय में उदय के वश हो जाता है, उदय को ही सर्वस्व मान लेता है और पूरा पूरा उदय के साथ जुड़ जाता है और उदय प्रसंग में वो डूब जाता है, तो उसका जो अनुभव वाला परिणाम है उसमें स्वयं का अनुभव हो रहा है, इसका पता उसको नहीं चलता। इसलिए उसको आत्मज्ञान होता नहीं, यानी अनुभव होता नहीं, और इसके अभाव के कारण, ऐसे स्वानुभव के अभाव के कारण नहीं जाना हुआ श्रद्धान गद्धे के सिंह का श्रद्धान समान होने से। क्या कहा? श्रद्धान इसी का हो सकता है जो चीज को जानी हुई हो। जिस चीज को जानते नहीं उसका विश्वास, उसका श्रद्धान, उसकी प्रतीति हो सकती नहीं। जैसे के गद्दे को सिंग नहीं होते क्या? भैंसों को होते हैं, गाय को होते हैं, गद्दे को सिंग नहीं होते। तो कोई कहेंगे कि हमको पूरी श्रद्धा है कि गद्दा का बड़े बड़े सिंग होते हैं क्या? तो किसी ने विवाद कर लिया कि नहीं, तुम्हारी बात सही नहीं है, गद्दे को छोटे छोटे सिंग होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। क्या ये नहीं जाने का श्रद्धान करके विवाद होता है? विवाद कहाँ होता है? जिस चीज को नहीं जानता उसको श्रद्धा भी उनकी नहीं होती और विवाद करने लगते हैं। तो जिसे चीज ही मन में नहीं जाने उसका विश्वास कैसे किया, उसकी बहस कैसे करते हो? कहते हैं कि नहीं जाने हुआ तत्व का श्रद्धान, आत्म तत्व को जिसने जाना नहीं इसका श्रद्धान गद्दे के सिंह के श्रद्धान समान होने से उसका सही श्रद्धान भी विदित नहीं होता, मैंने उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसा ये वैज्ञानिक सिद्धांत है श्रद्धा ज्ञान के बीच में, कि जिसका ज्ञान होता है उसका ही श्रद्धान होता है, एक काल में होते हुए भी ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, बिना ज्ञान श्रद्धान हो सकता नहीं है। और समस्त श्रद्धान उदय नहीं होने से तब समस्त अन्य भावों की जुदाई द्वारा, भेद द्वारा आत्मा में निशंक स्थिर होने का असमर्थपना होने से, ये ध्यान का विषय लिया, स्थिर होना, एकाग्र होना, ये ध्यान में होता है। जिसका ज्ञान हो उसी में प्रतीति हो तब स्थिर होने की ताकत आती है। स्थिर होने की ताकत कब आती है, एकाग्र होने की ताकत कब आती है? कि श्रद्धा ज्ञान हो तो होती है, अगर आत्मज्ञान नहीं है, आत्म श्रद्धान नहीं है, उसको आत्मा का ध्यान नहीं लग सकता। दूसरे का लग सकता है लेकिन आत्मा का नहीं लग सकता, उसको आत्मा आचरण स्वरूप आचरण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जरा घड़ी को दे दीजिए, कितना टाइम हुआ है पता नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, रख लेता हूँ मैं। कहते हैं यहाँ पर कि समस्त अन्य भावों की जुदाई करने में निशंक रूप से, क्या? स्थिर होने में निशंकता आनी चाहिए। श्रद्धा ज्ञान से कैसे निशंकता आती है, समझने लायक चीज है कि हमारा सुख हमारे में पड़ा है, सामर्थ्य रूप से, स्वभाव रूप से, हमारी शांति, हमारा आनंद हमारे में है। ये आनंद स्वभाव है, ये आत्मा में सभी गुण इनकी प्रॉपर्टी है, ज्ञान भी इसकी प्रॉपर्टी है, श्रद्धान भी आत्मा की प्रॉपर्टी है और आनंद भी आत्मा की प्रॉपर्टी है। लेकिन आनंद है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्या है? वो खींचती है परिणामों को। आनंद रूप आत्मा होने से आनंद की चाह जीव को इतनी स्वाभाविक तौर से है कि जहां भी उसको निश्चय हो गया कि मुझे यहां आनंद मिलेगा, मुझे यहां सुख मिलेगा, उसका उपयोग को जाने के लिए स्वयं ही रोक नहीं सकता, दूसरी अनुकूलता प्रतिकूलता तो रोक नहीं सकती, अनुकूलता तो बाधा नहीं पहुंच, प्रतिकूलता तो बाधा नहीं पहुंचा सकती, लेकिन दूसरी अनुकूलता प्रलोभन भी नहीं दे सकेगी। क्या? क्योंकि देवलोक में सम्यक दृष्टि देव अपने वैभव विलास में क्यों नहीं फंसता? सम्यक दृष्टि देव वहां वैभव विलास में फंसता क्यों नहीं? मिथ्या दृष्टि फंस जाता है, वो उतना फंसता है कि देव एक इंद्रिय भया, पता है छेढ़ला में देव एक इंद्रिय क्यों भया? वहां उसने सुख माना तो वहां वो एकाग्र हो जाएगा, जहां भी सुख उसने निश्चय किया है वहां उसका एकाग्र होना सहज है, ये परिणाम का विज्ञान है। इनकी श्रद्धा है कि सुख वहां है तो उसके परिणाम को वहां लगाने में कोई रोक सकता नहीं है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है जिनको आत्मा में सुख की आनंद की अनुभूति हुई तो आनंद की प्रॉपर्टी उसके परिणाम को खींचती है वहां, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो उसके परिणाम सहज रूप से निशंक रूप से, क्या बोला आचार्य महाराज ने, उसको शंका नहीं है कि मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन जाने, ऐसा नहीं है, मेरा सुख प्रत्यक्ष होगा मुझे पासी तो होता है, क्या स्वभाव के भाव भाषण में मेरा सुख मुझे प्रत्यक्ष भाव भाषित होता है, इसलिए मुझे कोई शंका नहीं कि मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। निशंकतया स्वरूप में स्थिर होने के लिए सम्यक दृष्टि समर्थ है और अज्ञानी को वहां सुख का ज्ञान भी नहीं, विश्वास मैंने प्रतीति मैंने विश्वास भी नहीं, तो स्थिर होने के लिए इनके चारित्र गुण के आचरण के परिणाम में समर्थता भी बल भी नहीं आएगा, इसलिए असमर्थपना होने से आत्मा के आचरण स्वरूप आचरण चारित्र भी उसको उदय नहीं तो होता, इसलिए जिसको ज्ञान नहीं है उसको श्रद्धा नहीं है उसको चारित्र भी नहीं होता। क्या फैसला किया आचार्य महाराज ने, तो ये कहता है कि देखिए भले हमें श्रद्धा ज्ञान नहीं हो, हमें ऐसे शास्त्रों की सिरफोड़ी में जाना नहीं है, कौन ये सिरफोड़ी करे, हम तो ये तत्व ज्ञान के पचड़े में पढ़ने ही नहीं चाहते, हम तो चारित्र ले लेंगे, क्या कहेंगे, हम तो ध्यान लगा लेंगे, हम तो चारित्र करेंगे। आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसा कभी बन सकता नहीं है, इतनी भ्रमणा है कि बिना श्रद्धा ज्ञान हमने चारित्र को प्राप्त कर लिया, ऐसा कभी बनता नहीं है, ये आउट ऑफ साइंस है, क्या विज्ञान के बाहर की चीज है, ये बन ही नहीं सकता किसी को, तीन काल तीन लोक में नहीं बन सकता, ये तो हमारे तीर्थंकर जिनेन्द्र परमात्मा ने अनुभव करके ये बात को खोली है, ये मार्ग दिखाया है, जिस मार्ग पर वो चले हुए मार्ग को दिखाया है, चल करके दिखाया है, ऐसा फेंका नहीं है, ये फेंका फेंकी की चीज नहीं है। कहते हैं कि ऐसे चार आचरण उदय नहीं होने से किसी को श्रद्धा ज्ञान चारित्र का अभाव होने से साध्य ऐसा जो आत्मा उसकी सिद्धि की अन्यथा अनुपपत्ति है, इसकी सिद्धि की प्राप्ति कभी अन्यथा मैंने दूसरे ढंग से हो सकती नहीं। ऐसे आचार्य महाराज ने यहाँ पर अज्ञानी कैसे अज्ञानी रहता है इसको भी खुला है, और अज्ञानी कैसे ज्ञानी होता है इसको भी खुला है। अज्ञानी के परिणमन का प्रयोग कैसे विपरीत चलता है इसको भी खुला है। अगर वो विपरीतता को छोड़ करके मोक्षार्थी होकर के कैसे भेद ज्ञान का प्रयोग करके श्रद्धा ज्ञान चारित्र को प्राप्त करेगा इसको भी यहाँ अच्छी तरह खोला है। ये अनुभव पद्धति से ये दोनों गाथा की टीका बहुत सुंदर चली है। इसका भावार्थ कहेंगे पंडित जयचंद जी कहते हैं कि भावार्थ में कि साध्य आत्मा की सिद्धि साधने योग्य उसको साध्य कहते हैं। क्या इसको साधा जाता है और वे साधने योग्य है क्योंकि उसमें सुख और आनंद की अनंत आनंद की खानी पड़ी है इसलिए वो साध्य है उपासना करने योग्य है। ऐसे आत्मा की सिद्धि मैंने प्राप्ति दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है दूसरी रीति से नहीं है। अस्ति नास्ति से फाइनल कर दिया इसको। इसी को अनेकांत कहते हैं। इस मार्ग को भी अनेकांत इसलिए कहा कि इस तरह ये प्राप्ति होती है दूसरी रीति से नहीं होती है। एक हो ये तरण काल मां परमारथनो पंथ आत्मसिद्धि श्रीमद जी कहते हैं। तो आचार्यों ने भी यही बात परमागमा में कही है। साध्य आत्मा की सिद्धि इस तरह भी हो रहे और उस तरह भी हो रहे किसी का नाम अनेकांत नहीं है। उसका नाम अनेकांत नहीं है ये तो मिथ्या अनेकांत है। सम्यक अनेकांत ऐसा है कि इस तरह होता है दूसरी तरह नहीं होता है। ये अपना मकान का डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा कि मेरा ये घर है इसमें मेरे पूर्व में भी मेरे भाई रहते हैं पश्चिम में भी दूसरा भाई रहता है बड़ा उधर रहता है छोटा उधर रहता है फिर भी इस दो के बीच में जो जगह है वो मेरी है मेरे दोनों भाई की नहीं है। क्या कहेंगे किसी का दर दावा हक हिस्सा इसमें नहीं है। नास्ति से फाइनल करना पड़ेगा वरना कहीं इस तो भाई तो नहीं बोलेगा लेकिन इसका बच्चा कभी बोलेगा कि तुम्हारे दस्तावेज में डॉक्यूमेंट में लिखा है कि तुम्हारा है लेकिन हमारा नहीं है वो कहां लिखा है इसलिए हमारा भी है तुम्हारा भी है और हमारा भी है तो ये झगड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए बात को अगर साफ करनी है तो ऐसे साफ करनी पड़ेगी अस्ति नास्ति से दोनों तरफ से साफ करनी पड़ती है। ये वकील लोग तो बाद में सीखे हैं आचार्यों ने पहले सीखा है ये बात को क्या है ये तो बाद में पढ़े लिखे लेकिन ये जंगल में बैठ कर क्या होते थे वो इंटेलेक्चुअल जायंट थे सुपर इंटेलिजेंसी वाले नहीं थे इंटेलेक्चुअल। आज भी हम दावा कर सकते हैं दावा क्या चैलेंज कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यदि कोई जज हो सकता है वो न्याय तोलता है इससे अधिक सूक्ष्मता से हमारे ज्ञानी और आचार्य जो स्वयं निर्दोषता को प्राप्त हुए हैं वो अच्छी तरह से न्याय को बता सकते हैं न्याय को तोल सकते हैं इसकी क्षमता उसमें है। क्यों कि जग जितना पवित्र होता है अपने जीवन में खान पीन में रहन सहन में इससे ज्यादा पवित्र हमारे आचार्य हैं हमारे गुरु हैं वो अधिक न्याय को समझते हैं जानते हैं बता सकते हैं कि हम चैलेंज कर सकते हैं। हाँ ठीक है क्या पढ़े लिखे नहीं है तो भी क्योंकि इनकी पहली दृष्टि होती है न्याय में पवित्रता में निर्दोषता में इनकी जो दृष्टि है ज्ञान है बहुत सूक्ष्म होता है इसलिए वो अच्छी तरह तोल सकते हैं। क्या कहते हैं इधर कि दूसरी रीति से साध्य की सिद्धि नहीं क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने, क्या जाने, कि ये जानने वाला अनुभव में आता है। क्या ना जयचंद जी ने क्या लिखा, जानने वाला जानने में आता है, ऐसा नहीं लिखा। देखिए एक एक शब्द में क्या बात है, ये जानने वाला अनुभव में आता है, वेदन में आता है, क्योंकि ये अनुभव का विषय अनुभव प्रधान है, ज्ञान प्रधान नहीं है। क्या खुदी है इसमें कि जिसका ज्ञान होता है उसका अनुभव नहीं हो सकता, पर का ज्ञान हो सकता है पर का अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन स्वयं का ज्ञान होता है और स्वयं का अनुभव भी होता है, तो अनुभव होता है इसका ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञान होता है इसका अनुभव नहीं होता है। और आत्मा का हम ज्ञान करें और अनुभव नहीं करें तो अनुभव वो आत्मज्ञान नहीं है। हमने शास्त्र के माध्यम से जान लिया कि आत्मा ऐसा है, क्या वो आत्मज्ञान हो गया या नहीं? जिसका ज्ञान हो आत्मा का, उसका अनुभव हो तो वो आत्मज्ञान है, और पर का ज्ञान हो उसका अनुभव हो ही नहीं सकता। लेकिन अनुभव तो स्वयं का अनुभव में जानना समाविष्ट हो जाता है, लेकिन जानने में अनुभव का समाविष्ट पना नहीं होता। ये खुली है इसके, जानना हो सकता है अनुभव नहीं भी हो सकता है, पर अनुभव में अनुभव अनुभव और जानना दोनों हो ही जाता है, एक साथ हो जाता है। तो गुरुदेव के उपस्थिति में एक हमारे यहाँ विवाद चला था, प्रश्न चला था, उसका विवाद भी चला था मुमुक्षुओं में, कि स्वानुभव के काल में चतुर्थ गुण स्थान में निर्विकल्प शुद्धोपयोग होता है तो वहां त्रिकाली का ज्ञान होता है कि पर्याय का ज्ञान होता है, प्रश्न ये चला। क्या बताइए आप, क्या होता है वहां? आपस में विवाद चलता था, कोई ये कहता था कि वहां त्रिकाली का ज्ञान होता है, पर्याय का ज्ञान होता ही नहीं। क्या वहां पर्याय का ज्ञान होता ही नहीं, वहां तो त्रिकाली का ज्ञान होता है क्योंकि त्रिकाली का अनुभव है। कोई ये कहता था कि नहीं मां, शुद्धोपयोग में आनंद का अनुभव आता है, पर्याय का ज्ञान होता है, कैसे जाना? तो ये कैसे बन सकता है, महात्मा तो अवलंबन त्रिकाली का है, आत्मज्ञान कहते हैं, आत्मा का ज्ञान कहते हैं, शुद्धात्मा का ज्ञान कहते हैं, जायज का अनुभव कहते हैं। फिर गुरुदेव को प्रश्न पूछा कि क्या होता है वहां, पर्याय का ज्ञान होता है कि नहीं होता है, क्या कहा पूछा, वहां त्रिकाली का ज्ञान होता है या पर्याय का ज्ञान भी होता है या दोनों का होता है, क्या होता है? गुरुदेव ने ये कहा कि वहां पर्याय वेदन में आती है। क्या? फिर पूछने वालों ने पूछा, साहब मेरा प्रश्न वो नहीं है। क्या पूछा? मेरा प्रश्न यह है कि पर्याय का ज्ञान होता है कि नहीं होता है। तो फिर भी गुरुदेव ने यही जवाब दिया कि पर्याय का वेदन होता है। तो फिर उनका हिम्मत नहीं चला, तीसरी दफे बोलने का हिम्मत नहीं चला कि मेरा ये प्रश्न है। क्यों? कि क्या गुरुदेव नहीं समझते थे कि इसका प्रश्न क्या है? हाँ, वो तो समझते हुए भी उत्तर ऐसा दिया कि पर्याय का वेदन होता है। बहुत खुदी है उस उत्तर में। क्यों? कि पर्याय पर लक्ष्य नहीं होने पर भी आनंद आदि का अनुभव आए बिना रहता नहीं, और हम जानने में ऐसा समझते हैं कि जिस पर लक्ष्य जाता है उसी का ज्ञान होता है, तो पर्याय पर लक्ष्य जाता ही नहीं, लक्ष्य तो त्रिकाली पर होता है और वेदन पर्याय का होता है, और पर्याय का वेदन होता है उसमें जानना हो जाता है, बिना लक्ष्य जानना हो जाता है, यही कहने का अभिप्राय था। हमारे पास समय कम है, किसी को समझ में नहीं आए तो बाद में दोपहर को प्रश्न कर लेना। लेकिन बात इसमें क्या है, लक्ष्य क्या है, अनुभव क्या है, वेदन क्या है, जानना क्या है, जानना होता है और अनुभव में जानना आ जाता है, जानने में अनुभव नहीं भी आता है, ये सभी प्रकार की जो बातें हैं तो बहुत साफ हमारी समझ में हुए तो हम कहीं विवाद में उलझेंगे नहीं और हमारा काम ठीक ढंग से कर पाएंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये जानने वाला अनुभव में आता है वही मैं हूँ, उसी का नाम आत्मज्ञान है। और उसमें प्रतीति पैदा हो जाती है श्रद्धा गुण में कि जैसा अनुभव में आया वैसा ही मैं हूँ। और ज्ञान और श्रद्धान होने से अन्य भावों से जुड़ाई सहज हो जाती है और अपने में स्थिरता आ जाती है। उस रूप से श्रद्धा ज्ञान चारित्र के परिणाम एक साथ हो जाते हैं, उसी को मोक्ष का मार्ग मैंने इलाज कहने में आया है, उसी में आत्मकल्याण है, यही कर्तव्य है। कर्तव्य के अपेक्षा से और दूसरा कुछ कर्तव्य नहीं होता। समय समाप्त होते हैं।
कोई ना हमारा।